نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. हमने जहन्नुम के बारे में और जन्नत के बारे में, दोनों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर जन्नत का शौक़ पैदा हुआ होगा और कुछ जहन्नुम का खौफ पैदा हुआ होगा। एक हदीस जो हमेशा मुझे तो बहुत ज़्यादा डराती है, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, मगर हकीकत हाल यही है। सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको हकीकत मालूम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बहुत ही कम औरतें दाखिल हो सकेंगी। जिस तरह कव्वों में सुर्ख चोंच और सुर्ख पाँव वाले कव्वे बहुत ही कम होते हैं, ये बेहकी की रिवायत है। यानी औरतें जो हैं कम जन्नत में जाएंगी। और पहले भी आपको एक हदीस बयान कर चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तादाद औरतों की जहन्नुम में देखी थी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हमसे कोई, नऊज़ु बिल्ला, कोई अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई हमसे दुश्मनी है कि ज़्यादा वहाँ जाएंगी। बात यह है कि औरतें कोई ना कोई ऐसे काम करती हैं जिसकी वजह से यानी उनका ठिकाना जहन्नुम बन जाएगा। अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं है, वो अपने बंदों पे कभी जुल्म नहीं करता, मगर कोई ना कोई तो ऐसी बात है ना। इसलिए हमें इतना ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि जब हम नेकियां करने वाले हैं तो इंशाल्लाह हम गुनाहों को छोड़ने वाले भी बने। ये ना हो कि साथ साथ अपने गुनाहों को वाइप आउट करते जाएं, नेकियों को वाइप आउट करते जाएं और गुनाह लिखे चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, इस तरह कई गुनाह ऐसे हैं वो नेकियों को मिटा देते हैं। तो हमने जो बात की थी जन्नत की, जहन्नुम की, वहाँ पे इन दो ठिकानों के अलावा एक और टेम्परेरी जगह भी है, एक वेटिंग रूम भी है, जिसका ज़िक्र सूरह आराफ में आता है, जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है, उसको आराफ कहते हैं। अगर आप 8वें पारे में देखें, ये आयात हमेशा बहुत ही ज़्यादा गौर तलब रही हैं, क्योंकि हमारे जहन में शायद ये नहीं रहता कि जन्नत जहन्नुम के अलावा एक ऐसी जगह भी है जहाँ भी लोग बहुत कर्ब में होंगे, बड़े मुश्किल में होंगे, कुछ लोगों को वहाँ पे भी रहना पड़ेगा। कितना अरसा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। पर आपके सामने ये आयात बयान करती हूँ, 8वें पारे में है, आयत 40 से मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। बेशक वो लोग जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात को और उन्होंने तकब्बुर किया उनसे, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, यानी उनकी रूहें आसमान की तरफ अलाउड नहीं होंगी कि वो अल्लाह के अर्श के सामने जाके सजदा करें। क्यों? अल्लाह ताला की आयात को नहीं माना था, उनसे तकब्बुर किया था, उनको इस काबिल नहीं समझा कि ये कोई काबिल अमल हैं, या उनको ऐसी डरावे की बातें ही समझा, उनको रिजेक्ट कर दिया। और वो दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए, जो कि नामुमकिन। और इसी तरह हम मुजरिमों को जजा देते हैं, उनके लिए जहन्नुम में बिछोना है, जहन्नुम में से उनके ऊपर भी ओढ़ना भी और बिछोना भी, किसका होगा? आग का। मैट्रेस की जगह भी आग और कंबल की जगह भी आग। कभी गर्मियों में बिजली चली जाए तो सोना मुहाल हो जाता है। अपने मुल्कों को याद करें, और कहाँ ये कि ऊपर भी आग और नीचे भी आग तो कोई सो सकता है। कभी आपने ऐसा खाना बनाया जिसमें नीचे भी आग रखी हो और ऊपर भी रखी हो, आग में दबा के? सोचें कि जो लोग अल्लाह की आयात से तकब्बुर करते हैं, खुद अपने आप को, अपनी अक़ल को बहुत बड़ा समझते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों को छोटा समझते हैं, उनका ये अंजाम है कि ऊपर भी आग होगी और नीचे भी आग। अगर हम लाइट चले जाने पे नहीं सो सकते तो ऊपर नीचे आग को कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसी तरह हम जालिमों को जजा देंगे, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम किसी जान पर उसकी वुसत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। यही लोग जन्नत के साथी हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हम निकाल लेंगे जो उनके सीनों में गिल में से जो भी गंदगी दिलों की है, वो अल्लाह ताला खींच लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, जन्नत में जाने से पहले एक नहर है जिसमें गोता दिया जाएगा, और सारी ये दिल की तंगियां, कदूरतें, कीने जो थोड़े बहुत रह गए होंगे, कोई गलत फहमियाँ होंगी, कोई कुछ, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। ऐसी जन्नत जिसके नीचे बहती हैं नहरें, और वो वहाँ जाके कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने हमारी रहनुमाई की इसके लिए, और हम तो हिदायत ना पा सकते थे अगर ना अल्लाह हमें हिदायत देता। अलबत्ता तहकीक आए रसूल हमारे पास हक लेकर, और वो पुकारे जाएंगे, उनको निदा दी जाएगी, ये है जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए इस वजह से कि तुम अमल करते थे, तुम दुनिया में अमल करके आए। और वो पुकारेंगे, जन्नत वाले पुकारेंगे जहन्नम वालों को। ये बात समझने की अब यहाँ से, कि जन्नत वाले जहन्नम वालों से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे तहकीक हमने तो पा लिया जो हमसे वादा किया था हमारे रब ने, इसको बिल्कुल सच पाया। देखें, जो आपको बातें मैंने जन्नत की बताई थी कल, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ऐसे तो लगता है मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली बात लगती है, पता नहीं कैसे हो सकता है इस तरह की चीज़ें हो, या शायद उसको लगे कि ऐसे बातें ही हैं। नहीं, वो वहाँ पे जब पहुँचेंगे ना तो तब वो कहेंगे जहन्नुम वालों को कि हमें जो जो हमसे वादे किए गए थे, वाकई जिस तरह हमें बताया गया था ना कि जैसे जन्नत होगी और आमाल के बदले में ये मिलेगा, हमने तो बिल्कुल सच्चा पाया कि हमारे रब ने बिल्कुल सच्चा वादा किया था। तो पूछेंगे इनसे फहल वजद तुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तो क्या तुमने भी वो सच पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था, तुम्हें भी वही मिला जो जिस तरह से तुम्हें बताया गया था, जिसका वादा किया गया था? कालू नाम, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो पुकारेगा एक पुकारने वाला, क्या कहेगा? लानत है जालिमों पर, अल्लाह की लानत है जालिमों पर, वो जो रोकते थे अल्लाह के रास्ते से और उसके रास्ते में टेढ़ापन तलाश करते थे, और आखरत के इनकारी थे, उन्होंने ज़िंदगी भूल के गुजारी, आखरत को भूले रहे, अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी हटाते रहे, वो तो हटे ही हुए थे। और ये है अब आराफ का जिक्र, व बैनहुमा हिजाब, और उन दोनों के दरमियान एक दीवार होगी, व अलल आराफ, आराफ पे वो बुलंदी पे होगी वो दीवार, इस पे कौन लोग होंगे? अब जाहिर है जब आमाल नामे तोले जाएंगे, नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, इतनी मखलूक है, इनमें कोई ऐसे भी तो होंगे, कोई मुसलमान, काफिर की नहीं बात कर रहे, मुसलमान ऐसे होंगे, क्योंकि काफिर तो सीधा ही जहन्नुम में चला जाएगा, उसकी तो तुलनी ही नहीं है ना, नेकियां बदियां उसकी क्या तुलेंगी, उसकी नहीं तुलनी, ये मुसलमानों की ही तुलेंगी, या मुनाफिकों की जो अपने आप को मुसलमान तो कहते थे। तो मुशरिकीन काफिर उनका का तो ये मसला ही नहीं है ना। अब तोली गई, अब कुछ कोई ऐसा भी तो होगा कि जिसकी नेकी और बदी बराबर हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो गई, एक नेकी ज्यादा हो जाती तो जन्नत में चला जाता, एक गुना ज्यादा हो जाता तो जहन्नुम में चला जाता, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही बिल्कुल बराबर। अगर नेकियां उसने बड़ी बड़ी की हैं तो गुनाह भी बड़े बड़े किए थे, या अगर नेकियां इतनी नहीं की तो गुनाह भी नहीं इतने किए होंगे, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो ये लोग एराफ पे बैठे होंगे, ये वहां पे वेट कर रहे होंगे अब कि अल्लाह ताला अब हमारे लिए क्या फैसला करता है, क्योंकि एक नेकी की कमी की वजह से ये जन्नत में जाने से रुक गए, और एक नेकी एक बुराई की कमी की वजह से ये जहन्नुम में जाने से रुक गए। तो अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करना है ना, अब तो ले गए अमाल, अब ये यहाँ पे अराफ पे बैठे हुए, तो ये बैठे होंगे, एक आड़ है ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान, इस पे कुछ लोग होंगे, वो हर एक को जन्नत वालों को भी पहचानेंगे उनके चेहरों से और जहन्नम वालों को भी, क्यों किस तरह पहचानेंगे, उनकी अलामतें ही ऐसी होंगी पता ही चल जाएगा, और वो पुकारेंगे जन्नत वालों को, सलाम हो तुम पर। वो इसमें दाखिल तो नहीं हुए होंगे लेकिन उम्मीद रखते होंगे अल्लाह से। ये मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ कि जब हम कोई नेकी करते हैं ना, तो उसके बाद बड़े आराम से बुराई कर लेते हैं, किस ज़ोम में कि आखिर हम इतने अच्छे भी तो काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं जाने दो, ये भी चली जाएगी, बुराई कर भी ली इतनी सी तो क्या फ़र्क पड़ गया, आखिर इतनी तस्बीहात कर रहे हैं, इतना कुरान पढ़ रहे हैं, इतने रोज़े हमारे अच्छे गुजर रहे हैं, इतनी हमारी तहज्जुदें हो रही हैं, इतने कयामुल लैल हो रहे हैं, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, अगर ये भी थोड़ा बहुत कर लिया तो चलता है भाई, इतनी भी रिजिड होने की ज़रूरत नहीं, अब कोई बात नहीं। तो हम अपनी नेकियां दुनिया में ही बराबर करते जाते हैं, दुनिया में बराबर बराबर होती जा रही हैं, तो ज़रा तसव्वुर में लाएं खुद को अराफ पे, आखिर इन्हीं तीन जगहों में से कहीं होंगे ना हम, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ना करे जहन्नुम में हूँ, लेकिन जहन्नुम एक जगह, एक जन्नत है और एक अराफ है। अगर वाकई खुद को अराफ पे खड़ा करके देखें, इंतज़ार की कैफियत कितनी मुश्किल होती है, हमसे इंतज़ार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं होता, लाइनों में खड़े होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे अभी पता ही नहीं है किधर जाना है, पता नहीं क्या अंजाम बने, वहाँ पे अराफ पे खड़े रहना और इंतज़ार करना वो कितना मुश्किल होगा, और कितनी हसरत होगी कि इतनी सी भी नेकी में ज़्यादा ले आती तो क्या फ़र्क पड़ जाता, अरे इतना सा तो ज़्यादा मैं कर लेती, चलो किसी को मुस्कुरा के ही देख लेती, सदक़े का अजर मिल जाता, सलाम ही कर लेती किसी को, एक सलाम ज़्यादा बढ़ जाता मेरा तो नेकी, क्योंकि इतनी इतनी, ये ना समझे कि बड़ी बड़ी नेकियों की कोई ज़रूरत, इतनी इतनी नेकी भी तुलेगी कि हदीस में आता है क़यामत के दिन सुआबा के बराबर, यानी जूं के अंडे के बराबर भी वज़न तोल लिया जाएगा, इतना सा, इतना वेट सेंसिटिव होगा वो मीज़ान कि जिसमें जूं का अंडा कितना होता है, लीक कि जिसको कहते हैं, नज़र भी नहीं आती वो तो, जिसको थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, उसके बराबर भी अमल तुल जाएगा, उससे भी मीज़ान में फ़र्क पड़ जाएगा, उससे भी एक तरफ का पलड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कितनी हसरत होगी अराफ वालों को कि अल्लाह हम इतनी सी तो नेकी और कर लेते, कि इस वक्त हम भी जबकि वो देख रहे होंगे वहाँ से, कितनी हसरतें होंगी जन्नत वाले नेमतों में और खुशियों में और बागों में और नहरों के पास बैठे हुए, देखिए वहाँ पे अंजाम कितने डिफरेंट है ना, एक तरफ नेमते हैं, एक तरफ बागात हैं, एक तरफ खुशियाँ हैं, एक तरफ हर तरह की सहूलतें हैं, आराम है, उनको भी वो देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आग है, पीप है, खून है, चीखो पुकार है। खुद सोचें, जब वो दोनों तरफ को देख रहे हैं, उनके हाल क्या होंगे? तो ये कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं है, ये वो इंतजार है जो एक तरफ रुसवाई देख रहा है कि किसी कल चैन नहीं है, और मौत 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 पुकार रहे हैं, हाय मर जाए, हाय मर जाए, और दूसरी तरफ आराम ही आराम देख रहे हैं। वो तो दोनों तरफ के सीन देख सकते हैं ना। सोचे उस वक्त इनकी हालत क्या होगी। वो अल्लाह से उम्मीद तो रखते होंगे कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन कोई चीज़ भी यकीनी नहीं है। और दूसरी बात ये कि पता भी हो ना इंसान को कि उसकी बचत हो जाएगी, फिर भी कितना डर लगता है कि अल्लाह एक ज़र्रे के बराबर भी अगर ये चांस है कि हमें जहन्नुम में ना डाल दिया जाए, तो वो तो ऊपर से बैठ के इनका अंजाम देखते हैं। वो कहते हैं कि बीमार को देख के जो उसके घर वाले होते हैं बेचारे, उससे भी ज़्यादा अजियत में होते हैं, है ना। और यहाँ पे तो ये हाल है कि ऊपर से देख रहे हैं ऐसी तकलीफ में लोगों को, तो इनका अपना क्या हाल रहेगा। तो वो जन्नत वालों को सलाम करेंगे, देख रहे होंगे कितनी उम्मीदें होंगी और कितनी हसरतें होंगी। और जब वो उधर को देखेंगे, दूसरी तरफ उनकी निगाहें जाएंगी आग वालों की तरफ, अरे डर जाएंगे, कहेंगे रब्बना ला तजालना माल कौम जालिमीन, अल्लाह हमें इनमें से ना करना इस जालिम कौम में से। लेकिन उस वक्त की दुआएं कबूल होंगी क्या? नहीं, उस वक्त दुआएं कबूल होने का वक्त ख़त्म हो चुका। ये तो दुनिया में ही करनी है, ये इनकी फरियाद है आराफ वालों की कि अल्लाह इस अजियतनाक ज़िंदगी में ना डालना, या अल्लाह इस चीज़ से बचा ले। उधर को देखते हैं तो ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह इसमें चले जाए, उनको सलाम करते हैं, इधर को देखते हैं तो डर जाते हैं। अब वो कहेंगे वहाँ से, पहले जन्नत वालों को उन्होंने ये कहा सलाम, और जहन्नम वालों को कहेंगे, उनके भी अलामतों से पहचानते होंगे, उनको कहेंगे अब वो कहाँ गए तुम्हारे जत्थे, वो जो सहेलियों का एक पूरा हजूम तुम्हारे गिर्द रहता था, वो जो तुम्हारे सपोर्टर थे, वो जो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, वो जो तुम्हारे हिमायती थे, वो सारे कहाँ गए? और जो तुम तकब्बुर किया करते थे, बड़ी बन बन के बैठती थी, बड़ी अपने आप को समझती थी, तो ये कहाँ गया सब कुछ? या यही है वो लोग जिनके बारे में तुम कसम खा के कि कहते थे कि इनको अल्लाह की रहमत नहीं पहुँचेगी, ये ऐसे ही हैं, ये इन इन इन्होंने कहाँ जाना है जन्नत में, और ये इस तरह की बातें कहते थे। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी बताया गया एक और सीन जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है, कि ये आग वाले जो होंगे ना, ये जन्नत वालों को पुकारेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला, मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे भी मजलिसें होंगी, महफिलें होंगी, हो सकता है अल्लाह ताला दिखा दें उनको, जन्नत वाले दिखा दें वहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे टीवी में देख लेते हैं चीज़ें दूर बैठे हुए, तो जन्नत में करीब जाके तो नहीं देखेंगे, वो आग में जल ही रहे होंगे, वहाँ से उनको ना जन्नत वाले दिखाए जाएंगे, वो उनको पुकारेंगे जन्नत वालों को, जहन्नुम वाले अब जल रहे हैं, जल रहे हैं, और इस जलने में वो पुकारेंगे अन अफीदु अलैना मिनल मा, डालो हम पे पानी में से। ये जो मैंने आपको नेमतें बताई ना, कि वो देखेंगे जन्नत वाले इतनी नेमतों में, जहन्नमियों का तो पानी ही खौलता हुआ, वो पानी कैसा होगा जो भाप बन के उड़ेगा नहीं, वो पता नहीं किस टेम्परेचर का पानी होगा, किस चीज़ का पानी बना होगा वो, ये वाटर तो नहीं होगा, जाहिर है कोई धात पिघलाई भी है या कोई कुछ है कि जो वेपरेट भी नहीं हो रहा, इतना खौलता हुआ उनका पानी होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ऊपर का होंठ सूज के इतना बड़ा हो जाएगा कि आँखों को और सबको कवर कर लेगा चेहरे को, और नीचे का होंठ नाफ तक चला जाएगा, इतना सख्त खौलता हुआ पानी है। तो वो जब जन्नत वालों को देखेंगे नेमतों में कहेंगे हम पे ज़रा पानी ही डाल दो, हम इतना जल चुके हैं, कुछ हमारे पे डाल दो। जैसे जलने वाला कहता है ना मुझे को थोड़ी पानी के नीचे कर दो, ज़रा सा हाथ जल जाए तो फौरन ठंडे पानी के नीचे डालते हैं। तो वो कहेंगे हम पे पानी डालो। ओ मिम्मा रज़ाकुमुल्लाह, यहाँ जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया वो हम पे हमारे लिए थोड़ा सा फेंक दो, इधर भी फेंक दो। कोई जन्नत का की खजूर, कोई जन्नत का फल, कोई जन्नत के अंगूर, कोई जन्नत के अनार, कोई एक चीज़ तो फेंक दो हमारे लिए जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। ये दुनिया में तो कुत्तों के आगे फेंका जाता है, और ये वहाँ पे पुकारेंगे ज़रा हमारी तरफ भी फेंक दो, हमें भी कुछ डाल दो। और क्या देखेंगे, देखो ज़रा ये इंसान के कोई, हो सकता है किसी के कोई माँ पुकार रही हो सकता है किसी की कोई बेटी पुकार रही हो सकता है किसी का बाप पुकार रहा हो। क्या हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ी अजियत में हैं। वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर थोड़ा ही है, कोई हॉस्पिटल थोड़ा ही है कि वहाँ पे भाग के चले जाएंगे कि जल गए हैं तो इसको 911 थोड़ा ही है कि वहाँ पे कॉल कर लेंगे। जलन तो है साथ भूख प्यास भी तो है, इसलिए मांगेंगे थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो। वहाँ से चीखने की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा हमें हमें थोड़ा रिस्क फेंक दो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। दुनिया में तो सारे ही खाते पीते हैं, मगर वहाँ पे ये नेमते अल्लाह ने हराम कर दी इनके लिए। तो जन्नत वाले कहेंगे नहीं, जो इनकार करने वाले हैं उनके लिए ये दोनों अल्लाह ने हराम कर दी। अल्लाहु अकबर। जो नहीं मानते थे, जो इनकार करके जीते थे, ये कौन से लोग हैं? अल्लदीन अत्तखज़ू दीनहुम लहवा वलाइबा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था। खेल तमाशा समझते थे दीन को तुम, तफरी समझते थे, ऐसे ही मशगला समझते थे, पार्ट टाइम जॉब समझते थे। और उनको तो दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, इस 4 दिन की ज़िंदगी को हमेशा का समझ लिया था, इसको इसमें ही इतने मगन थे, इसी को ऐसे समझ लिया था कि इसने कभी नहीं ख़त्म होना। और दीन को तो ऐसे समझ लिया था कि जब मूड हुआ कुछ कर लिया, नहीं मूड हुआ तो छोड़ दिया, जोश आया जिस दिन तो कर लेंगे, जोश ठंडा हो गया तो सब छोड़ के बैठ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं तो आज हम भुला देंगे उनको, जैसे वो आज की मुलाकात को, अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। दुनिया में हम भूल के ही तो रहते हैं, भूले रहते हैं ना अपने वापस जाने को। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आज हम उनको उस तरह भुला देंगे जैसे उन्होंने इस दिन की मुलाकात को भुलाया हुआ था और वो हमारी आयात का इनकार करते थे। तो देखो आज इतनी नेमतों से हमारे दस्तरखान सजते हैं। आज के दिन जब आप इफ्तारी करें तो सोचिएगा कितनी नेमतें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। और जहन्नुम वाले एक एक चीज़ के लिए तरस रहे होंगे, इवन पानी तक के लिए, कि पानी डाल दो हमारे ऊपर, एक कोई खाने की चीज़ ही फेंक दो इधर वहाँ से, कुछ तो दे दो। तो नेकियों को मामूली ना समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, मत समझो किसी नेकी को छोटा ना समझो। सोचो वहां पे कितनी जरूरत होगी एक एक नेकी की, एक नेकी से हो सकता है हमारी बचत हो जाए। अगर ये समझ के करेंगे ना तो बहुत नेकियां करना आसान हो जाएगा, फिर आप थकेंगे नहीं कि हो सकता है यही वो नेकी हो जो मेरे आमालनामे में नेकियों के पलड़े को झुका दे। हो सकता है एक यही गुनाह हो जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा बैठ जाए, वो भारी हो जाए। तो गुनाह को छोड़ते वक्त ये ना सोचा करें फिर क्या हो गया, छोटा सा ही तो है, फिर क्या हो गया, इतना भी तो कर रही हूँ, सो वॉट, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, हो सकता है यही गुनाह एक ले डूबे, हो सकता है यही एक झूठ, हो सकता है यही एक गीबत, हो सकता है यही एक बुरी बात, हो सकता है यही एक काम हो जो मेरे गुनाहों के पलड़े को झुका दे, उसमें उसको वजनी कर दे, जहां पे है जूं के अंडे के बराबर भी आमाल तुल रहे हैं वहां पे छोटा गुनाह भी छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए गुनाहों में दलेर ना हो, इसलिए उनको छोटा ना समझा करें कि छोटा करके समझ के आपने कर लिया और आराम से बैठ गए। इसलिए छोटे हों या बड़े, हर गुनाह पे तौबा, हर गुनाह पे इस्तगफार, कि अल्लाह जिन गुनाहों को हम जानते हैं उन पे भी हम तौबा करते हैं, और या अल्लाह जिनको नहीं जानते जो भूल गए हैं हमें, अल्लाह ताला हम उन पे भी तौबा करते हैं, हर तरह के गुनाहों पे तौबा, हर तरह के गुनाहों पे माफी। अल्लाह ताला जो जानते बूझते कर लिए उन पे भी माफ कर देना, और जो अनजाने में किए उनको भी माफ कर देना, जो छोटे किए उनको भी माफ कर देना, जो बड़े किए उनको भी माफ कर देना। तो हम सबको बख्शिश मांगने की बहुत ज़रूरत है, और आप खुद सोच लें कि इस रहमत के महीने में हमारी अगर बख्शिश ना हुई तो बेकार गया सब कुछ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और अगर इस महीने में बख्शिश हो गई तो हम कामयाब हो गए, अगर हमने अपने रब को राजी कर लिया। तो आज का जिक्र, आज की दुआ यही है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह मैं बख्शिश मांगती हूँ मिन कुल्ली ज़म्बिन, हर एक गुनाह से, और तौबा करती हूँ। तो इसमें सारे ही गुनाह आ गए। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह इस रहमत के महीने में हमारी मग़फ़िरत कर दे, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे, और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दे। ये ज़रूर कहा करें कि अल्लाह जहन्नुम से बचा के दाखिल करना, जहन्नुम में से ले जा के नहीं दाखिल करना, जहन्नुम से बचा के। भाई कुछ लोग चले भी जाएंगे जन्नत में, मैंने आपको बताया था ना आखिरी जो बंदा जन्नत में जाएगा उसका भी हाल बताया था, तो चले जाएंगे जन्नत में, लेकिन इस जहन्नुम में से होते हुए आप मुझे बताइए, अगर आपको कहा जाए 4 दिन जहन्नुम में रहना पड़ेगा, 4 दिन आग में, चलो दुनिया की आग कर लो, 4 दिन आग में रहो और फिर आपको ये मिल जाएगा, कोई रहना चाहेगा? 4 दिन भी नहीं आग में रह सकते, कहेंगे नहीं जितने मर्जी पैसे हमने, पैसों को क्या करना है, ये तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती है। लेकिन जहन्नुम पे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका कितना सब्र है ना जहन्नुम की आग पे, अल्लाह ताला भी हैरान है कि इनका कितना सब्र है जहन्नुम की आग पे, कि देखो इनको पता भी है कि जहन्नुम की आग है, इनको पता है, इनको उसका यकीन है, फिर भी कितने दलेर हुए हैं, कितना इनका सब्र है, कितने आराम से बैठे हुए। भाई हैरत है तुम्हारे ऊपर, कहते हो कि हाँ जहन्नुम हक है, कहते हो कि हाँ जन्नत हक है, कहते हो हिसाब किताब हक है, कहते हो कयामत का दिन हक है, कहते हो अल्लाह हक है, फिर भी आराम कर रहे हो, फिर भी कोई फिक्र नहीं है, फिर भी अंदर बेचैनी नहीं लगी हुई, फिर भी डर नहीं लगता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये दुआ करनी है कि अल्लाह जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देना, अल्लाह जहन्नुम से ले जा के ना करना, अल्लाह हम एक लम्हे की भी जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हमें दिखाना भी नहीं, वो इतनी तेज़ी से तो पुल से रात से गुजारते ना, हमें दिखाना भी नहीं अल्लाह जहन्नुम की आग को। यहाँ पे किसी मकान में आग लग जाए और आपको अंदर से चीहों की आवाज़ आ रही हो, आप उस आग में नहीं भी हो, तब भी क्या हाल होगा दिल का, और कितनी बेचैनी होगी, और कितनी रात नींद नहीं आएगी, कितनी रातों तक कि उस मकान को चारों तरफ से आग लगी हुई थी और अंदर से चीहों की आवाज़ आ रही थी, अंदर से शोर मचाने की आवाज़ आ रही थी, अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी, क्या हाल रहेगा बताएं। अगर आपका बाहर खड़े हुए ये हाल, तो जो अंदर होंगे उनका क्या हाल होगा। ये दुनिया की आग है जिसको बुझाने के लिए चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, जिनको निकालने के लिए लोग कोशिशें कर रहे होते हैं, और जिनको अंदर वालों को उम्मीद होती है कि हमें कोई निकाल लेगा, उनका सोचें जो जहन्नुम में चल रहे होंगे, तो उनको क्या उम्मीद है। तो अपनी नजरों के सामने सोचा करें, लेकर आया करें इस सीन को कि जहन्नुम है, और अगर मेरे लिए ये ऐलान हो गया, मेरे लिए अगर ये ऐलान हो गया कि तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूंगी। तब आपके लिए हर नेकी करना आसान हो जाएगा और हर गुनाह को छोड़ना भी आसान हो जाएगा। आप किसी चीज पे ये नहीं कहेंगी ये बड़ा मुश्किल है, ये क्यों कम आया, ये नहीं, अरे मुझे तो सर नीचे पैर ऊपर भी करने पड़ेंगे तो कर लूंगी। फिर आप ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये छोड़ना कौन सा मुश्किल है, आग से तो बच जाऊं। देखिए इसी तरह वो लोग जो पहले लोग थे ना, वो तसव्वुर किया करते थे, तसव्वुर में अपने आप को सोचते थे कि हम अगर वहां पे खड़े हुए तो हमारा क्या हाल होगा, तसव्वुर में अपने आप को वहां पे लेकर जाते थे, अपने सामने लेकर आते थे एक बुजुर्ग है यजीद रक्काशी रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं मैंने अपने तसव्वुर में किया कि मैं जहन्नुम में चला गया हूँ। देखिए इस तरह वो सोचा करते थे, जहन्नुम में मैंने अपने आप को पाया और देखा कि मैं अपने, यानी इमेजिनेशन में कह रहे हैं, मैंने इमेजिन किया कि मैं जहन्नुम का थोर खा रहा हूँ, उसकी पीप पी रहा हूँ, और मुझे हथौड़ों से और कोड़ों से पीटा जा रहा है। मैंने इसी हालत में अपने आप से पूछा, अपने नफ्स से, ये नफ्स नहीं ना करने देता, इसकी बड़ी ख्वाहिशात है ना, इसकी बड़ी मैं है, तू अपने नफ्स से पूछा बता तू क्या ये चाहता है। उसने कहा नहीं, मैं दुनिया में लौटना चाहता हूँ ताकि नेक अमल कर लूँ और उन नेक अमल से इस दर्दनाक अजाब से बच जाऊं। फिर मैंने अपने आप को जन्नत में मौजूद ख्याल किया कि मैं उसके वसी बागात में दौड़ रहा हूँ। अब ये देखिए जो मैंने आपको कल और परसों बताई थी जन्नत और जहन्नुम की बातें, तो आपने आपको आपने इमेजिन किया उन जगहों पे, तो कहते हैं कि मैं उस वसी शादाब बाग में दौड़ता फिर रहा हूँ, उसकी हूरों के साथ बैठा हूँ, उसकी रेशमी लिबास मैंने पहने हुए। मैंने अपने नफ्स से पूछा क्या तू ये चाहता है। उसने कहा मैं दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूँ ताकि नेक अमल करूँ और इनके ज़रिए से जन्नत की नेमतों में इजाफा कर लूँ और ज़्यादा पड़ जाए। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को फिर ये दिखा के मैं दुनिया में अपने आप को वापस लेकर आया। देखिए हम तो ड्रीम करना वैसे ही हमें बड़ा अच्छा लगता है, ख्वाबों की दुनिया में रहना, हर वक्त कोई ना कोई ख्वाब देखते रहते हैं, मतलब आंखें खुली आंखों के साथ ख्वाब देखते रहते हैं। एक जवान लड़की ख्वाब देखती रहती है कि मेरा शादी होगी, घर होगा, कैसा होगा, इसी तरह लोग ख्वाब देखते रहते हैं, हमारे बड़े घर हों, हमारे ऐसे हो जाए, ये हो जाए, कितने ख्वाब होते हैं, बच्चे बड़े हो जाए, हम उनके बच्चों को देखें, कैसी कैसी चीज़ें सोचते रहते हैं, कैसे कैसे ख्वाब हैं। कभी ये भी खुली आंखों से ख्वाब देखा करें, खुद को जन्नत में ले जा के देखें, वहाँ के बागात में सैर करा के देखें, फिर खुद को जहन्नुम में भी ले जा के देखें, और वहाँ की आग और पीप में खुद को समझे के घेरे हुए, फिर उसके बाद अपने आप से पूछे अब तू क्या चाहता है, अब छोड़ा जाता है तुझसे ये गुनाह, अब ये नेकी करना कोई मुश्किल है। तो कहते हैं ये इसी तरह कि मैंने अपने नफ्स से कहा अब बता, अब तेरे सामने ये दुनिया है और ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह है जो तूने ख्वाहिश की है, तो बस जो अमल तू करना चाहता है अब कर ले, अब टाइम है तेरे पास। वहाँ से तू वापस नहीं आ सकेंगे ना, वहाँ पे एक दफ़ा चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। क्यों ना यहाँ पे इस चीज़ को इमेजिन करके अपने आप को सही कर ले। मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको इतकाफ का बताऊंगी, तो जो लोग इतकाफ बैठना चाहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र सिवाय एक दफ़ा के, सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ किया हर रमज़ान में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जब से आपको ये मालूम हुआ कि लैलतुल कदर इन 10 आखिरी रातों में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त से फिर आखिर तक ये 10 रातों का इतकाफ किया करते थे। तो इतकाफ जो है ना, इतकाफ का मतलब ही होता है कि इंसान यानी दुनिया के ताल्लुकात और मसरूफियात और घर बार इससे अलग हो के एक जगह मस्जिद में क़याम करे और हर फिक्र से बेताल्लुक़ हो के सारी अपनी कुव्वत को अल्लाह की याद में, उसकी इबादत में लगा दे, बिल्कुल सबसे अलग थलग हो के ना। तो एक इस अमल से एक तरफ तो इंसान हर किस्म की बुराइयों से, बुरी बातों से, देखने से, बोलने से, सुनने से महफूज रहता है, दूसरी तरफ ये होता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रहता है, उसका कुर्ब मिलता है, जो कि हमारा एम है इस रमज़ान का। और ये 10 दिन इंसान की ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है ना कि दिल पे ऐसा गहरा असर होता है, क्योंकि इंसान बिल्कुल कट ऑफ होता है ना अपने हर तरफ से। ये नहीं पता क्या खबरें हैं, क्या दुनिया में हो रहा है, किसका क्या है, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह की याद में लगा हुआ। तो जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर ये कनेक्शन उसके लिए सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, कब्र की वहशत में भी उसका गमख्वार होगा। जब कोई गमख्वार नहीं होगा, अब कोई साथी नहीं होगा, ये उनसियत उस वक़्त साथ निभाएगी, ये उस वक़्त सफ़र की साथी होगी। ये है तकाफ का मकसद। तो अफजल तरीन तो यही है कि आखिरी 10 रातें किया जाए, 10 दिन किया जाए। और अगर 10 दिन नहीं कर सकते तो जितनी भी तौफीक आपको, 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, जितनी भी, बस नून तो यही है 10 दिनों का। लेकिन नफली इबादत है ना, देखिए नफली इबादत में कोई वो नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से अपनी हिम्मत के मुताबिक कर सकते हैं। और औरतों के लिए ये है कि अगर मस्जिद में इंतज़ाम है तो ठीक है, नहीं तो अपने घरों में ही मुनासिब जगह देख के एक तरफ़ को बैठ जाए, अपना पर्दा वगैरह लगा लें, ताकि आना जाना लोगों का ये वो पता नहीं चले। बेहतर तो ये है किसी एक ऐसा रूम का इंतखाब करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें वगैरह नहीं आती हों, शोर शराबा नहीं हो, ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें। तो ये बड़ा ही सवाब का अमल है। इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसका एहतमाम किया। और इतकाफ करने वाले की मिसाल उस बंदे की जैसी है कि जो किसी के दर पे जा पड़े, समझ लें किसी के दरवाजे पे आप जाके गिर गए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी मैं नहीं यहाँ से हटूँगा। तो जब ऐसा कोई आके गिर ही जाए किसी के दरवाजे पे, तो सोचें सख्त से सख्त दिल इंसान का भी दिल पसीज जाता है ना। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो बड़ी बख्शिश करने वाली है, बड़ी करीम ज़ात है वो, तो अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है अपने बंदे पे रहमत करने के लिए। तो जब कोई इंसान उसके दरवाजे पे जाके दुनिया सारी को छोड़ के एक तरफ डाल के अपने 10 दिन उसने डेडिकेट कर दिए अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला क्यों ना उसको नवाजेगा। तो इसका मकसद ही अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाना है, सबसे हट के, सारी मशगूलियात से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान मस्जिद में बैठे तो अब उसको एक सोशल गैदरिंग का ज़रिया बना ले और बस अब बातें हो रही हैं और इधर उधर, नहीं, उसमें फिर अल्लाह की तरफ ही ध्यान करना है। वो ऐसे इंसान का जो इतकाफ करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका सोना भी जो है ना वो भी इबादत है, अल्लाह के लिए वो अपने आप को अलग करके बैठा हुआ है। तो हदीस में भी आता है ना, जो शख्स अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है मैं उससे दो हाथ करीब होता हूँ, जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। तो जो अल्लाह के घर पे जाके पढ़ जाएगा, तो सोचिए ज़रा, मस्जिद में जो जाके पढ़ा हुआ है अपने आप को उसने सबसे अलग किया हुआ, तो किसी के कोई घर आ जाए तो उसकी वो कितनी इज्जत करता है ना। आपके कोई घर दुश्मन भी चल के आ जाए, आप कहते हैं अब आ गया, तो बस छोड़ो, अब सारी बातों को भूल जाओ। तो जो इंसान आजजी के साथ गिर जाए अल्लाह के सामने, चलो मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में ही अपनी छोटी सी समझ ले मस्जिद बना ले, तो वहाँ पे अल्लाह के सामने गिर जाए सब चीज़ छोड़ के, तो इंशाल्लाह ज़रूर बख्शिश होगी। तो जो लोग भी कर सकते हैं, जिनको घर की तरफ से इजाज़त है, जिनको यानी कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है, तो वो ज़रूर इसकी हिम्मत करें। और इस महीने में तो पीक टाइम जो है ना, वो यही 10 दिन है जो एंड किए हैं, 10 रातें हैं जो एंड किए हैं, क्योंकि महीना रुखसत हो रहा है, जा रहा है। अब इस महीने में लूट लें जितनी आप लूट सकते हैं इसकी रहमतें। तो थोड़ा मैं आप सबसे कहूँगी कि ये इन 10 दिनों के लिए ना, प्लीज़ अभी से ज़रा तैयारी करें। क्या तैयारी करनी है? कि जो आपके बाहर के काम वगैरह हैं वो निपटा लें, ताकि आप 10 दिनों में सारा वक्त आप घर पे रहें। घर पे होंगी तो कुछ ना कुछ करने के लिए वक्त भी मिलेगा, ताकत भी रहेगी, वरना अगर बाहर के काम ही नहीं ख़त्म होंगे कि अभी ग्रोसरियाँ हैं, अभी ये है, अभी वो, बड़ा कुछ होता है, तो इबादत कब करेंगे? तो अगर हम इतकाफ़ करने वाले नहीं भी बन सकते, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो इतकाफ़ करने वाले की तरह हम कुछ ना कुछ अपनी उससे मुशाबहत तो कर सकते हैं ना कुछ अपने ऊपर वही हालत तो तारी कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला जानता है कि अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ ना होती तो हम ज़रूर बैठते इतकाफ़, लेकिन इन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं बैठ पा रहे। तो अल्लाह हमारी इसी तरह कबूल कर लेना कि हम बाकी सारी भाग दौड़ आप छोड़ दें, जो आपकी सिर्फ ज़रूरियात है उनको पूरी करने के अलावा बाकी सारा टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारें। सिर्फ जो जो अशद ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो करें, और जो चीज़ें हो सकती हैं प्लीज़ उनको इस वक्त निपटाएं, उनको कोशिश करें कि अभी ये यानी 21वीं रात स्टार्ट होने से पहले आप अपने काम निपटा लें। खैर, काम तो ज़िंदगी के ख़त्म नहीं होते, वो तो चलते ही रहने, लेकिन जो काम आप पहले कर सकती हैं उनको कर लें, ताकि इन 10 दिनों में आप इंशाल्लाह एक इतकाफ़ करने वाले की तरह ही हो जाएं। चलो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर लेते थे, लाइट कर लेते थे, कमर बांध लेते थे इबादत के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप इतकाफ़ अगर बैठती हैं तो हमारा ये प्रोग्राम भी सुन सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी कोई बात करनी हो तो पर्चियाँ लिख लिख के बात करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी बात भी कर सकते हैं आप इतकाफ़ में, मगर घर वालों के साथ बैठे रहना या उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं वो नहीं। बिल्कुल आप अपने आप को समझ लें एक राहिब की तरह, बिल्कुल अलग कर लिया इस तरह आपने इंशाल्लाह ताला इतकाफ़ बैठना। इसके बारे में मैं और भी आपको गाइड करती रहूँगी, और जिसने नियत करनी है तो फिर इंशाल्लाह ताला वो अभी से इसके ऊपर सोच ले और अपने काम निपटा ले, इसलिए आपको पहले से बता रही हूँ। एक ऐसी नेकी भी है जो कि छोटे से काम पे आपको एक कबूल हज का अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औलाद अपने वालदैन पर या उनमें से किसी एक पर शफ़क़त और मोहब्बत की से नज़र डालेगी तो अल्लाह ताला इसको हर नज़र के बदले एक मकबूल हज अता फरमाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अगर कोई रोज़ाना 100 दफ़ा इन पर नज़र डाले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ 100 दफ़ा नज़र डालेगा। तो अल्लाह ताला तो हमें सोचे ना, हमारे वहमो गुमान से भी बाला तर ज़ात है, वो देने से नहीं थकता, तो हर नज़र पे ये सवाब दे देगा वो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिनके पास पेरेंट्स हैं तो वो इंशाल्लाह इस नेकी को कमा सकते हैं, एक मकबूल हज का अजर ले सकते हैं। तो आज का जिक्र और आज की दुआ मैंने आपको बता दी, इसके अलावा एक दुआ आपको और बताना चाहती हूँ। जिक्र तो आप सारा दिन ही करते रहेंगे, एक दुआ ख़ास तौर पे अपने लिए इफ्तार के वक्त ज़रूर करिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, तेरे फजल का आफियत का सवाल करती हूँ, मेरे दीन में भी, दुनिया में भी, मेरी फैमिली में भी, अहल में भी और माल में भी। ये सारी चीज़ों में आफियत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों में अल्लाह का फजल ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों में इनकी भलाई और खैर मांगना ज़रूरी है। तो इसमें आपकी फैमिली भी आ जाती है, आपका दीन भी, आपका माल भी, आपकी दुनिया भी, हर तरह की भलाई आ गई ना। तो इस दुआ को शामिल करिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला हमारा क़याम और सियाम कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचा के और जहन्नुम के अदना से अजाब से भी बचा के जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमा दे और अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह इस महीने में हमें बख्शिश से महरूम ना रखना, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा देना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।